તારીખ 2/2/1993 શ્રી સમયસાર ગાથા 69 અને 70 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 81
સમયસાર પરમાગમ કર્તા કર્મ અધિકાર 69 ગાથા આશ્રો અને આત્મા વચ્ચે ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનો અનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી એકત્વ રૂપ અજ્ઞાન છે. શું કહેવું છે? આશ્રો ઓર આત્મા કે બીચ મેં જો દોનો કા સ્વાદ ભિન્ન ભિન્ન હૈ તો ઉસકા અનુભવ ભી ભિન્ન ભિન્ન આના ચાહીએ. કિંતુ એક રૂપ અનુભવ આતા હૈ વો અનાદિ કા એકત્વ હૈ, અજ્ઞાન હૈ, મિથ્યાત્વ હૈ. ઓર જહાં તક ઉસ ભેદ કો અનુભવતા નહીં વહાં તક વો અજ્ઞાની રહેતા હૈ, ઉસકો કર્મ કા બંધ હોતા હૈ, વો રાગાદિ ભાવો મેં લીન હો જાતા હૈ ઓર અપને સ્વરૂપ કી વિદ્યમાનતા કો વો અનુભવ મેં નહીં લેતા. જગત મેં પ્રાણીઓ કો દુઃખ હોને કા યે મૂળ કારણ હૈ. કિસી ભી જીવ કો દુઃખ હોતા હૈ ઇસકા ક્યા કારણ? કોઈ બાહ્ય સંયોગ દુઃખ કા કારણ નહીં હૈ. ભીતર મેં જો રાગાદિ પરિણામ હૈ ઉસકો યહાં આશ્રવ કહેતે હૈ. વો આશ્રવ કે સાથ એકત્વ હોતા હૈ, તન્મયતા હોતી હૈ. અપના ભિન્ન અનુભવ ભિન્ન હોને પર ભી નહીં રહેતા. એ સર્વ દુઃખ કા કારણ હૈ, એ સર્વ દોષ કા ભી કારણ હૈ. એ ગાથા કા વિષય હૈ. ઓર ઉસ વિષય મેં ટીકાકાર આચાર્ય ભગવાન ઉસકો કૈસે ભિન્ન અનુભવ કરના યહી ભેદ જ્ઞાન કી વિધિ કો સમજાતે હૈ. નહીં કિયા કર્મ બંધ સે ભી ભેદ જ્ઞાન કી બાત નહીં કિયા, આશ્રવ સે ભેદ જ્ઞાન કી બાત કિયા. રહસ્ય કે પહેલે તો આશ્રવ હોતા હૈ, બાદ મેં બંધ હોતા હૈ. પહેલે તો આશ્રવ આશ્રવ કો તો રોકે નહીં ઓર બંધ કો રોકના ચાહે ક્યા? કલ દ્રષ્ટાંત દિયા થા કે કિસી ને હમારે જગા પર કબજા તો જમા લિયા તો એક કેસ દૂસરા હો ગયા. ઓર કિસી કો આને હી નહીં દેવે તો વો કેસ દૂસરા હોતા હૈ. જબ આ ગયા તો કહેંગે કે મેં તો કબ સે આતા હું, મેં તો બહુત પુરાણે કાળ સે ઇધર નિવાસ કરતા હું. આને વાળા યે કહેગા ઇસલિયે મેરા તો યહાં રહેને કા અધિકાર હૈ. યે બાત તો લૌકિક ન્યાય મેં ભી અનુભવ મેં આતી કે નહીં આતી? દોનો મેં ફરક હૈ. યહી તો ઇસકા રહસ્ય હૈ, ઇસ વિષય કા યહી તો રહસ્ય હૈ. કે આવે ઉસ વક્ત ઉસકો રોકો, આ જાને કે બાદ ઉસકો કા નિકાલના, વો તો નિકાલને કા સવાલ હી નહીં રહેતા. આ ગયા ઉસકો નિકાલેગા ક્યા? વો તો આ ગયા મેને આ ગયા, આતે હી રોકો ઉસકો. એસા કહેતે હૈ આશ્રવ મેને આના. તો આતે હૈ ઇસ વક્ત રોકો, મેને વર્તમાન મેં વો કાર્ય કરના હૈ. ક્યા उसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जब दूषित परिणाम आने लगते हैं उस वक्त ही उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। ये बात है उसमें। अवलोकन यहाँ से शुरू होता है, ये तो प्रत्यक्ष प्रयोग है, आगे भेद ज्ञान का प्रयोग है, इससे आगे की बात है। अवलोकन से भी आगे जा करके जो भेद ज्ञान होता है उसकी बात लेते हैं आचार्य महाराज। वो तो जो भेद ज्ञान नहीं कर सकता है उनको पहले सिखाते हैं कि पहले अवलोकन करो, जिसको भेद ज्ञान करने का नहीं आता कैसे भेद ज्ञान करे, प्रयोग करे, उसको कहते हैं कि पहले अवलोकन करो। जो भेद ज्ञान करेगा उसकी तो आत्म जागृति बहुत है, जब भेद ज्ञान कर सकता है।
दूषित परिणामों का फल शरीर है, दूषित परिणामों के फल में शरीर मिला।
हाँ,
ये जो लोग मान्यता है कि पहले परपदार्थ से भेद ज्ञान करो, ये बात वास्तव में यथार्थ नहीं,
यथार्थ नहीं, ये क्रम नहीं है भेद ज्ञान का। भेद ज्ञान इससे अवश्य किया जाता है लेकिन क्रम नहीं है। क्रम तो आश्रमों से भेद ज्ञान करने का क्रम है, जो आचार्य महाराज शास्त्र लिखते हैं। क्या आचार्य महाराज शास्त्र लिखते हैं, इसका मतलब क्या कि जो अपने अनुभव में जो बात आई है और जिस अनुभव करके अपने सफलता को प्राप्त किया है, वो अनुभव सिद्ध बात को, अपने अनुभव को का पूरा बयान करते हैं, उसको शास्त्र कहने में आता है। अपने अनुभव की बात को जिस प्रकार अनुभव में आई उसी प्रकार को उसका बयान करना, इसका विवरण करना, उसी का नाम शास्त्र है। और उसमें से सिद्धांत निकलता है कि शास्त्र में जैसे अनुभव की बात कही वैसे ही सभी जीवों को उसी प्रकार से ही कार्य सिद्धि होने की संभावना है। उसमें कोई दूसरा प्रकार से कार्य सिद्धि कर ले वे वो भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि मार्ग उपाय इलाज एक ही प्रकार का है, दो मार्ग नहीं है, मार्ग दो है नहीं, दो उपाय नहीं है, दो प्रकार के इलाज नहीं है। ये चर्चाएं चलती थी। भेद ज्ञान घर मकान कुटुंब परिवार से करना, अपना देह से पहला करना, या राग से करना, या एक समय के पर्याय से करना, किससे करना, भेद ज्ञान कहाँ से शुरू करना, ऐसी चर्चाएं चलती थी। तो भिन्न के भेद ज्ञान की बात में भिन्न करने का विषय बहुत से हैं, तो कहाँ से चालू करना, उसका क्रम क्या, आश्रमों से भेद ज्ञान करना यही उसका क्रम है। 17-18 में क्या लिया देखो, ये सुगमता के लिए गाथा लिया है ना आचार्य महाराज ने, आबाल गोपाल के सुगमता के लिए वो बात लिया है। दूसरा पारे इसी बात को विशेष समझाते हैं, दूसरा पैराग्राफ टीका का, कि जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो अनुभूति है सुई में हूँ, तो सर्व प्रकार के जो भाव, अनेक प्रकार के जो भाव थे उससे भेद ज्ञान करवाया अनुभूति का, कि अनुभव में आने वाला ज्ञान भिन्न है और दूसरे प्रकार के जो भाव है वो भिन्न है। वहां रागादि से भिन्नता किया है, वहां शरीर से नहीं करवाया, नहीं जानते थे क्या शरीर से करना है वो, ऐसा बात क्यों लिखते हैं? ऐसे ही भेद ज्ञान चालू होता है, दूसरे प्रकार से भेद ज्ञान हो ही नहीं सकता। समझ में वो बात लगे कि जो सूक्ष्म नहीं समझे, राग से आत्मा का भिन्नपना अनुभव करना यद्यपि बहुत सूक्ष्म है, और देह से और दूसरे संयोग से आत्मा भिन्न है ऐसा समझना वो स्थूल है, तो समझाने में पहले स्थूल विषय से समझावे फिर सूक्ष्म विषय समझ में आवे, लेकिन प्रयोग में ऐसा नहीं है। प्रयोग में स्थूलता से यहाँ प्रयोग करो ऐसी बात यहाँ नहीं है। जहां जहां जो जो योग्य है वहां वहां वैसा समझना, वहां कल्पना से दूसरी बात नहीं लेना, अपनी कल्पना से कोई दूसरी बात को आगे नहीं करना। जहां महात्माओं ने, पूर्व ज्ञानियों ने, आचार्यों ने जहां जो बात कही है उसके पीछे क्या कारण है वो बराबर समझ करके, इसकी योग्यता समझ करके, बराबर उसको समझ को स्वीकार करके फिर उसका प्रयोग करना। हाँ, એમાં શરીરથી નિવૃત્તિ લીધું છે એ સમજવા માટે પહેલા લીધું છે, એ સમજવા માટે લીધું છે। પ્રયોગ તો અહીંથી જ થાય છે, રાગથી જ થાય છે, વિભાવથી જ ભિન્ન કરવાનો પ્રયોગ થાય છે। અહીંયા તો તેજસને કારણ શરીર લીધું છે, તેજસને કારણ શરીર તો કિસી કો જ્ઞાન મેં છદમસ્ત કો दिखने में आता ही नहीं, कैसे करेंगे भेदना ऐसा। लेकिन शास्त्र में बात तो है, तो विचार करें कि जब बात में दो तीन बात आती है भेद ज्ञान में हमारे सामने, तो हम कहां से प्रयोग कहाँ से चालू करें, वो प्रश्न उठावे। जब हमारी समझ से बात सीधी समझ में नहीं आती है, तो उसका प्रश्न जिज्ञासा होना चाहिए कि कहाँ से काम चालू करना, किस ढंग से, कहाँ से चालू, शुरुआत कहाँ से करें। अनजानपना हुए तो भूल जावे, स्वयं का इस विषय में अनुभव नहीं हुए तो भूल हो सकती है, क्योंकि ये सिर्फ पठन पाठन का तो विषय नहीं रहा। शास्त्र है वो कोई पठन पाठन का सिर्फ विषय नहीं है, शास्त्र की बातों को अनुभव गम्य करके उसकी सत्यता को का निर्णय करना है। आचार्य महाराज ने कह दिया इसलिए मान लिया वो बात नहीं है, भगवान कहते हैं इसलिए माने वो बात इधर नहीं है। हमारे अनुभव की कसौटी पर हम चढ़ावे उसको और उसकी सत्यता को का निश्चय करें। शुरू से लेवे टीका, कल थोड़ा चला था, शुरू से लेवे पहले दृष्टांत देते हैं, जैसे करके पहले दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत भी आत्मा का देते हैं और सिद्धांत भी आत्मा का समझाते हैं। देखो, जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म सिद्ध संबंध है ऐसा आत्मा और ज्ञान, क्या कहा कि आत्मा और ज्ञान में तदात्म संबंध है, तादात्म सिद्ध संबंध है, संयोग सिद्ध संबंध नहीं है। क्या कहना है? संबंध दो प्रकार के होते हैं, संयोग से संबंध होता है, और जो संयोग रूप नहीं है लेकिन भीतर में ही इसका एक अंग हो उसको भी उसको संबंध रूप कहने में आता है। तो ज्ञान है वो तो आत्मा के स्वभाव का अंगभूत तत्व है, राग है वो संयोग रूप तत्व है, दोनों में बहुत अंतर है। क्या संयोग का वियोग होता है और स्वभाव का वियोग नहीं होता, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, एक स्वरूप का अंग है वो। तो ज्ञान और आत्मा के जिनके आपस में तादात्म सिद्ध संबंध है, इसलिए ज्ञान में और आत्मा में विशेष में अंतर यानी भिन्नता भेदपना न होने के कारण उनके भेद को न देखते हुआ, भेद है ही नहीं उसमें, कहते हैं गुण गुणी का भेद यहाँ गौण कर दिया, गुण गुणी का भेद भी नहीं लिया, ज्ञान को आत्मा ही ले लिया, गुण गुणी का भेद भी यहाँ नहीं लिया और द्रव्य पर्याय का भेद भी नहीं लिया। ज्ञान और आत्मा में भेद नहीं देखता हुआ निशंकतया, फिर उसमें शंका नहीं है कि ये कोई पराई चीज है, ज्ञान कोई पराई चीज है ऐसी शंका नहीं उठती है, निशंक रूप से ज्ञान में आत्मपणे से प्रवृत्तता है, ज्ञान है सो मैं हूं ऐसी प्रवृत्ति होती है, यानी ज्ञान में अपना अस्तित्व को, अपने स्वरूप को, अपनी विद्यमानता को निशंक रूप से अनुभव में लेते हैं, ऐसे प्रवृत्ति करते हैं और वहां प्रवृत्ता हुआ, वहां मैंने ज्ञान में अपनत्व रूप से आत्मपने से प्रवृत्ता हुआ, वो ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है। विधि के प्रकरण में ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं है। क्या विधि के प्रकरण में ज्ञान क्रिया पर्याय होने पर भी उसका निषेध नहीं है, ये अलग प्रकरण है। विधि का प्रकरण अलग है और आश्रयभूत तत्व को स्थापित करना, दर्शाना, उसको मुख्य करना, उसको लक्ष्य में लेना, वो प्रकरण अलग है। दोनों प्रकरण की शैली अलग अलग है, कथन करने की शैली अलग अलग है, कहने की पद्धति अलग अलग है। उसमें पर्याय को निषेध करेंगे, गौण करेंगे, जो अपना स्वरूप है उसको मुख्य करने के लिए मुख्य करने वाली पर्याय को गौण करेंगे। क्या दूसरी क्या बात करें मुख्य तो पर्याय करेगी, लेकिन मुख्य करने वाली पर्याय को गौण करेंगे। और जब विधि का विषय चलेगा तो वहां कहेंगे कि ऐसे जो विधि विधेयात्मक कार्य हो रहा है उसका निषेध नहीं है, निषेधात्मक कार्य है उसका निषेध है। उसमें दो विभाग कर देते हैं, विधि और निषेध। तो विधि से तो कार्य का विधेयकपना होता है तो उसका निषेध नहीं किया जाता, उधर स्पष्ट रूप से ना दिया है कि ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं किया गया है। क्यों? कि स्वभावभूत होने से, स्वभावभूत होने से ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं किया गया। इसका बहुत गहरा मतलब ये लेना चाहिए कि जो मुमुक्षु है और जिसको विधि की प्राप्ति नहीं है, क्या जो मुमुक्षु है और जिसको कार्य पद्धति यानी सही विधि नहीं आती हो, उनको ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं है, उनको ज्ञान क्रिया का निषेध नहीं है, क्योंकि ज्ञान क्रिया से तो उसको अवलंबन मिलेगा। अवलंबन त्रिकाली का लेंगे तो कैसे लेंगे कि ज्ञान क्रिया के माध्यम से लेंगे। वो तो वान गंजी ने गया ज्ञान क्रिया अवलंबी फरिशो अनुभव सिद्धि उपायो रे, ऐसा लिया कि नहीं लिया? ज्ञान क्रिया अवलंबी फरिशो अनुभव सिद्धि उपाय हो रहे, अनुभव की सिद्धि करना है तो ज्ञान क्रिया के अवलंबन से उसकी स्पर्शन आती है, उसको पकड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानता है। जानता है मतलब जानने रूप में परिणमित होता है, आत्मा जानने रूप में परिणमित होता है, आत्मा स्वयं जानने रूप में परिणमित होता है।
ज्ञान
के माध्यम से ही भीतर जाते हैं, वो भी ज्ञान क्रिया के माध्यम से ही पकड़ते हैं, लेकिन उनमें टेक्निक क्या है, उनकी कोई खूबियां हैं तो वो है कि वो ज्ञान क्रिया की मुख्यता वहां नहीं आती। जिसका अवलंबन लेना है इसकी मुख्यता है, लक्ष्य उसके पर रहता है, जिसके पर लक्ष्य रहता है उसकी मुख्यता रहती है, लेकिन कार्य कहाँ कैसे होता है, कार्य की जो कार्य पद्धति है, विधि है, उसी विधि से ही कार्य होता है, दूसरे विधि से कार्य नहीं होता है। उसको विधि समझाते हैं, जिसको विधि की खबर नहीं उसको विधि समझाते हैं। पानी तो मूल में पाया जाता है, पानी फल की प्राप्ति के लिए भी मूल में पाया जाता है, फल को पानी पाया जाता नहीं है। ये फल छोटा है, वो बड़ा होवे तो हम खाएं उसको, इसलिए उसको पानी देना है, तो क्या फल को पानी देवे या मूल को पानी देवे, कि पानी मूल को दिया जाता है, यही इसकी विधि है, फल प्राप्त करने की यही विधि है। ठीक है, चलो व्रत तप नकाम है या व्रत तप काम में है, एक कृपालु देव का वचनामृत है, बहुत सुंदर है, उस पर चर्चा में तो लिया था दो दिन पहले, ये बात चर्चा में तो लिया था। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत क्या, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट व्रत, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट तप, दोनों आ गया। उत्कृष्ट में उत्कृष्ट नियम और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट इसकी प्राप्ति लब्धि, इससे जो लब्धि हुई वो, और उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मैंने कमांड, अपना ऐश्वर्य कहीं भी झुकते नहीं है, वो जिसमें सहज समाया हुआ है, ऐसा निरपेक्ष अविषम उपयोग को नमस्कार करते हैं, ये शुद्धोपयोग है, उसमें सब आ जाता है, क्या उसमें सब समा जाता है, तो हम तो ये शुद्धोपयोग को नमस्कार करते हैं, शुद्धोपयोग को ग्रहण करते हैं, यही हमारा ध्यान है, दूसरा कोई ध्यान नहीं है, ये व्रत तब सब इसमें आ गया, कोई बाकी नहीं रहा। और जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळो, एमां व्रत नहीं पचकाण नहीं नहीं त्याग वस्तु कोई नो, महापद्म तीर्थंकर थशे श्रेणी के ठाणांग जोई लियो, ठाणांग सूत्र में पांचवें अंग में, ठाणांग के ठाणांग पांचवा ठाणांग सूत्र है, उपदेश केवल निर्मलो, ऐसा उपदेश देखो तुम, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळो, आम छे ये रास्ता पकड़ना है। ज्ञान होने से व्रत संयम की रुचि यथार्थ रूप में बढ़ जाएगी, और वही यथार्थ व्रत संयम को अंगीकार करेगा। लेकिन पहले ज्ञान नहीं है और व्रत संयम पहले लेने को जाएगा तो अपनी शक्ति का पूरा खर्चा उधर कर हो जाएगा। સંસારમાં મગજમારી નથી કરવી પડતી હેપન ક્યાં કરતે થે સાબુ કા કારખાના ચલાતે થે ધીરુભાઈ સાબુ બનાતે થે તો ઉસમે કોઈ મગજમારી નહીં થી ક્યા હે કિતની મગજમારી થી કે કચ્ચા માલ કોણ સે લાના ઉસકા કોઈ ઘાણ બિગડ નહીં જાવે ક્યા ઉસકો તો ચૂલા પે ચડાના પડતા થા ઉસકો તો અગ્નિ મે ચલાના પડતા થા પહેલે બનિયા લોગ નહીં કરતે થે મુસલમાન લોગ કરતે થે હમારે વઢવાણ મે તો વરા લોગ કરતે થે સબ જૈની હિન્દુ નહીં કરે વો કામ અગ્નિ કા કામ હૈ ને ભઠ્ઠી કા કામ કોઈ નહીં કરતે તેલ કા પેપરમેન્ટ કા સાબુન કા और उसमें फिर उसका कंपटीशन होए जितने साबुन बनाने वाले हो उसमें अपना माल कैसे बिके तो बाजार में कितने मगजमारी कितनी हुए है एक ग्राहक आवे उसको एजेंसी देना हो अपना माल तुम लो दूसरों का नहीं लो समझाने के लिए क्या क्या करना पड़े है उसकी खुशामत करना पड़े कैसा भी हो तो उसकी खुशामत करना पड़े इधर तो ऐसी इतनी मगजमारी नहीं है जितना साबुन बना के बेचे साबुन बना के बेचे उतनी मगजमारी तो इधर नहीं है फिर क्यों कंटाला हाँ लेकिन जहां सुख मिलता हो वहां सब तकलीफ गौण हो जाती है क्या हमारे मीरालाल जी गुवाहाटी में धंधा करते हैं आए पुसारा जाए गुवाहाटी में क्यों करते हैं भावनगर में ठहरते हैं और उधर 2000-1500 माइल दूर में क्यों करते हैं कि भावनगर वाले तो यहाँ कंपटीशन करने को जाने वाले नहीं हैं इसलिए जहाँ कोई हमारी बराबरी नहीं करे वहाँ काम करो भले 3 दिन लगे आने जाने में 4 दिन लग जावे क्यों कि जहाँ हरकत है वहाँ बरकत है हरकत नहीं होगा तो सब करने लग जाएंगे सबका कंपटीशन हो जाएगा तो वहां तो ऐसा करते हैं कि जहां बरकत है वहां हमको हरकत की कोई बाधा नहीं है और यहाँ अनंत सुख मिलने वाला है क्या अनंत सुख 3 लोक का नाथ हो जाएगा तो उसके लिए लगता है कि ये सिर फोड़ी क्यों करे माथा फोड़ी क्यों करे उतना समझे क्यों क्यों समझे कोई लाभ है इसके पीछे के लाभ नहीं है पूरा लाभ है देश विदेश जाते हैं पैसों के लिए तो देश विदेश जाते हैं हजारों मिल जाते हैं अमेरिका जाते अफ्रीका जाते खून खराबा होता हो जाता है वहां तो अफ्रीका में तो घर में ताला लगा के बैठना पड़ता है 15 आदमी घर में हुए तो ताला लगा के बैठना पड़ता है फिर भी वहां रहते हैं क्यों पैसा मिलता है इसलिए रहते हैं वहां इसलिए जाते हैं वहां इसलिए उल्लासित वीर्य से ये अपने आत्महित की प्रवृत्ति में प्रवेश करना उल्लासित वीर्य से प्रवेश करना कंटाला नहीं लाना हाँ माध्यम को अपने स्थान में तो रखो जी जहाँ जाना है वो मुख्य है हमें घर जाना है लेकिन रास्ते से जाना है बिना रास्ता तो घर पहुंचेंगे नहीं लेकिन रास्ता को पकड़ करके बैठ जाएंगे तो घर पहुंचेंगे नहीं तो जिसका जहाँ जितना स्थान है उतना वहाँ उसका स्थान रहना चाहिए, होना चाहिए। जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे ता समझू ते इतना तो होना चाहिए। इसलिए ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है। इसलिए आत्मा जानता है, जानने रूप में परिणमित होता है, ये दृष्टांत लिया। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जिनने संयोग सिद्ध संबंध है ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रव, क्या आत्मा और क्रोधादि आश्रव जितने भी विभाव हैं वो क्रोधा वो आश्रव है। क्रोध इसलिए लिया कि वो स्थूल है, समझ में आता है। क्रोध में ऐसा होता है कि क्रोध आने से पहले भीतर में थोड़ी खलबली चालू हो जाती है, हो जाती है कि नहीं? अगर कोई आदमी जागृत है सतर्क है तो उसको पता चल जाएगा कि अरे मेरे का क्रोध का आश्रव चालू होता हो गया। इसलिए क्रोध का दृष्टांत लिया। आत्मा और क्रोधादि आश्रवों आश्रवों में भी अपने अज्ञान भाव से क्रोधादि आश्रवों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानते और मैं आत्मा हूँ मेरी जाति भिन्न है ऐसे दोनों के बीच में तफावत अंतर नहीं देखता है वहां तक वो अपने रूप में परिणमित करता है, अपने पने से परिणमित प्रवर्तता है। जैसे ज्ञान में प्रवर्तता है वैसे ही क्रोधादि में प्रवर्तता है। और वहां प्रवर्तता हुआ वह यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, ये पराई चीज होने से, ये चीज आत्मा का स्वभावभूत नहीं होने से और प्रभावभूत होने से उनका निषेध किया गया है। तथापि उस स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। ये तो क्या आचार्य महाराज ने समझाया कि अज्ञानी के परिणाम में क्या हो रहा है। अज्ञानी के परिणाम में प्रभावभूत का निषेध करने जिसका निषेध करना चाहिए उसका निषेध नहीं करके अपनापन जान करके उसको एकत्व रूप में उसका अनुभव कर रहा है। ये तो अनादि की स्थिति है। अब कहेंगे कि उस स्थिति को कैसे मिटाना, जब यह परिस्थिति है उस परिस्थिति को कैसे मिटाना, ये बात अभी कहेंगे। अब कहेंगे प्रयोग की बात। अब तो स्थिति को स्थापन किया, दृष्टांत देकर वर्तमान स्थिति को बता दिया कि ये जो रोग है वो उस तरह से रोग है। अनादि का जो मिथ्यात्मक अज्ञान का रोग है उसका निदान किया, क्या पहले रोग का निदान कर दिया कि इस ढंग से ये रोग प्रवर्तित हो रहा है। अब इस रोग को कैसे मिटाना, ये गाथा बहुत प्रयोजनभूत है, वेद ज्ञान करने के लिए बहुत प्रयोजनभूत है ये। अब यहाँ कैसे प्रयोग करना, यहाँ में वो बात है। अब यहाँ कैसे प्रयोग करना, जब ये परिस्थिति अनादि के है हमारी कि क्रोधादि से एकत्वपना हो करके जैसे ज्ञान से एकत्व होता है वैसा ही क्रोधादि से हम एकत्व कर रहे हैं। अब क्या करना कि यहाँ पर जब यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभासित होता है वह करता है, और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न जो क्रियमाण रूप से क्या अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभासित होते हैं ऐसे क्रोधादिक वे उस कर्ता के कर्म है। क्या कहा, कर्ता कर्म सिद्ध के अधिकार है ना, उसी पद्धति से बात करते हैं, कर्ता कर्म का अधिकार है तो वैज्ञानिक पद्धति से बात करते हैं कि अज्ञान भाव है वो अज्ञान भवन रूप एक कर्म है। क्या है, वो एक कार्य होने से कर्म है, और जहाँ भी कार्य और कर्म होता है उसका कर्ता भी होता है। तो वो कर्ता किस प्रकार से होता है और कार्य किस प्रकार से होता है, ये तो ये कर्ता कर्म की अनादि संसार की प्रवृत्ति जीव के परिणाम में चल रही है। तो पहले तो उसको दर्शाते हैं कि ये तेरे में हो रहा है, तेरा प्रयोग को तुम अवलोकन करके देखो, अपने उल्टा प्रयोग को अवलोकन करके देखो कि क्या हो रहा है भीतर में। हम कहते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो कहने वाले की सत्यता है उसकी प्रतीत आ जाएगी कि कहने वाले सत्य कहते हैं, तो इसका इलाज में भी विश्वास आएगा। फिर से क्या कहते हैं कि जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से अपना स्वरूप के अज्ञान भाव से, किसका अज्ञान है उसको कि ज्ञान भवन ज्ञान का होना, क्या आत्मा ज्ञान स्वरूप है उसमें ज्ञान भवन होता है, भवन मैंने होना, भूभव टू बी होना, ज्ञान का होना उतना ज्ञान मात्र का होना, ज्ञान भवन मात्र लिया साथ में विभाव रागादि नहीं लेना, एकला ज्ञान लेना, मात्र ज्ञान लेना, इतना भाव में क्या है कि उसमें सहज उदासीन अवस्था है। ज्ञान भवन क्या है, एक उदासीन अवस्था है। उदासीन अवस्था मैंने क्या कि जिसमें आसक्ति का अभाव हो उसको उदासीनता कहने में आता है, क्या खिंचाव नहीं होवे। ज्ञान भवन मैंने आत्मा का मात्र जानना उतना ही परिणमन है, क्या ज्ञान सामान्य लेना, मात्र जानना ग्यो 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 होता है वो उदासीन भाव है, वो मात्र जानने के सिवा कुछ करता नहीं। अपन क्या अवलोकन में लेते हैं तलाश करने में कि ये खाने से हर्ष हुआ, बहुत अच्छी चीज खाई हमको बहुत अच्छा लगा, हर्ष हो गया, क्या आया आत्मा में कि आत्मा में उसका जानना हुआ, कुछ हुआ नहीं, उदासीन रूप से जानना हुआ। ज्ञान में तो उदासीनता है, ये इनका स्वभाव है, ये मूल स्वभाव ज्ञान का उदासीन रहना, यही ज्ञान का स्वभाव है, मात्र जान जान करके भिन्न रहना, जान करके अलग रहना, यही उनका स्वरूप है, उसका स्वभाव है। तो अज्ञान अवस्था में उसका त्याग कर देता है, क्या करता है जीव कि ज्ञान भवन मात्र उदासीन मैंने ज्ञाता दृष्टा अवस्था भाव, उस अवस्था का त्याग करके देखो उसका वो, लेकिन वो उसका त्याग भी करता है साथ में, हाँ उसका त्याग कर देता है। उसको ग्रहण करता नहीं, मैं ज्ञाता दृष्टा ऐसा ग्रहण नहीं करता। ग्रहण करने में क्या होता है, मैं पना आता है, तो उसमें मैं पना नहीं करता, वही उसका त्याग है। ग्रहण त्याग में क्या है, मैं पना करना, अपनत्व करना, वो ग्रहण करना है, और अपनत्व नहीं करना वो त्याग करना है। अपनत्व नहीं किया तो उदासीन हो गया। सारे गांव में हजारों घर है, अपने को पता है कि नहीं है कि इस शहर में कितने घर है, हजारों घर है, हम उदासीन है कि नहीं है, हम क्या है, हम तो हमारे बंगले है उसका, उसमें अपेक्षा रखते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। बगल वाले का भी हम चिंता करेंगे नहीं, सारे गांव की तो चिंता क्या करेंगे, उदासीन है, जानते हैं कि है, लेकिन हमें क्या मतलब कि इसमें अपनत्व नहीं होने से कोई आसक्ति होती नहीं है। इसलिए अपना ज्ञान मात्र जो स्वभावभूत अंग है उसका त्याग कर लिया है, ज्ञान में उसके प्रति उदासीन हो गया, उसका त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप क्या करता है, वो क्रोधादि क्रिया है, वो अज्ञान भवन व्यापार है, जीव के परिणाम है। अज्ञान भवन एकत्व होना, क्रोधादि भाव में एकत्व होना, यह अज्ञान भवन व्यापार रूप क्रिया है। तो कहते हैं को अज्ञान भवन व्यापार रूप, उसका अर्थ करते हैं, अर्थात करके क्रोधादि व्यापार रूप अपने रूप से प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, उसको लगता है, प्रतिभाषित होता है मतलब लगता है कि मैं क्रोध करता हूं, और उसमें वो क्रोध का करता होके क्रोध करता है, मैं क्रोध को करने वाला क्या अनुभव करता है कि मैं क्रोध को करने वाला, मैं ज्ञान को करने वाला नहीं रहा, मैं क्रोध को करने वाला रहा। तो ये क्रोध का करता हुआ, और अज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न, और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न, मैंने जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है उससे एक भिन्न जाति की ये क्रिया है। क्रोधादि क्रिया क्या है, भिन्न जाति की है। वो कब पता चले उसके भिन्न कहा, यहाँ तो आचार्य महाराज ने भिन्न कहा, तो भिन्न कहा इसलिए भिन्न माने, या भिन्न जाने इसलिए भिन्न माने। तो जिसको परिचय होगा क्रोधादि भावों का और ज्ञानादि भावों का, ज्ञान का परिणमन में अपना परिचय करे और क्रोधादि परिणामों का परिचय करे, तब पता चले कि दोनों में भिन्नता है, एक अपना रूप है एक अपना रूप नहीं है, यानी दोनों की जाति भिन्न भिन्न है। भिन्न मैंने जाति भिन्न भिन्न है, एक विभाव जाति के परिणाम है, एक स्वभाव जाति के परिणाम है। तो ये परिचय बिना पहचान नहीं, किसी भी चीज की हो या किसी भी व्यक्ति की हो, परिचय बिना पहचान नहीं होती। हम सारे विश्व के अलग अलग पदार्थों के परिचय करके उनकी पहचान करते हैं, जिसका जो व्यवसाय है उसको उनकी परख होती है कि नहीं होती है, वो परख कहाँ से आई कि उसका परिचय बहुत हो गया, इस चीज का परिचय बहुत हो गया तो परख आ जाती है। लेकिन हमारे परिणाम में ज्ञान की परख नहीं, और क्रोध और रागादि भावों की हमें परख नहीं है, पहचान नहीं है, कि दोनों की जाति अलग अलग है, और पहचान नहीं होने से उनकी भिन्नता मालूम नहीं पड़ती। तो पहले परख आने के लिए परिचय में जाना पड़ेगा, वहां तक उसकी भिन्नता भाषित नहीं होगी। ऐसे हम सीख लेवे, शास्त्र स्वाध्याय करके हम सीख लेवे कि राग और ज्ञान भिन्न है और हमारे परिणाम में वो भिन्न भाषित नहीं हुए, तो ये ओक संज्ञा हुई कि नहीं हुई? ओक संज्ञा हुई कि नहीं हुई? जैसे संगीत की मात्रा सीख ले कि इस छंद में उतनी मात्रा, उस छंद में उतनी मात्रा, दोहा में उतनी मात्रा, उपजाति में उतनी मात्रा, वसंत तिलका में उतनी मात्रा, साधुर विक्रीडित में, मंदाक्रांता में उतनी मात्रा, लेकिन जब वो चलता हो तो पता नहीं चले कि ये क्या, कौन सा राग चल रहा है, कौन सा ढाल चल रहा है, कौन सा छंद में वो गा रहे हैं, उसका पता नहीं चले। तो वो बात सीखी सिखाई ओग संज्ञा में जाती है। कल प्रश्न चला था ओग संज्ञा क्या चीज है, कि बिना परख बिना पहचान जो भी समझ है उस समझ को ओक संज्ञा कहने में आई है। तो समय सार पढ़ करके हम वो समझ लेवे कि ज्ञान और राग भिन्न है, देह और आत्मा भिन्न है, लेकिन उस भाव में तो समझे नहीं भिन्नता, या उस भाव में तो भिन्नता लगे नहीं। तो ये समझ है वो शास्त्र के अनुकूल होने पर भी, उसकी न्याय युक्ति समझ में होने पर भी उसको ओक संज्ञा कहने में आती है। है क्या नहीं?
सूक्ष्म जितना भी हो, तो सूक्ष्म जितना भी होवे,
कितना भी होवे, न्याय युक्ति आगम तर्क अनुमान सबसे समझे, लेकिन भाव तो भाषित होवे नहीं भिन्नता का। राग या क्रोधादि ज्ञान से भिन्न है, वो भिन्न को भिन्न तो देखे नहीं, भिन्न को भिन्न समझे नहीं, अनुभव में आते हैं उनकी भिन्नता नहीं समझ में आवे, और विचार में लेके उनकी भिन्नता है, वाणी में कहे के उनकी, वचन में कहे के भिन्नता है। तो ये भिन्नता वचन की विचार की बेकार जाएगी, क्या होगा, बेकार जाएगी। शरीर की वेदना और ज्ञान स्वरूपी आत्मा भिन्न है कि अभिन्न है? कि भिन्न है, शास्त्र से तो जाना कि वेदना शरीर की पर्याय है, लेकिन अनुभव में, अनुभव में उसकी भिन्नता नहीं रही, तो वेदना का दुख भोगे बिना नहीं रहेगा, असाता वेदनी का में पकड़ आ जाएगी तो उसका दुख से छूट सकेगा नहीं। देखो वहां भी वो बात आई है, इतिहास है सोगाने जी का, जीवंत इतिहास है अपने पास, तो जीवंत दृष्टांत है। क्या सुना, देव और आत्मा भिन्न लिया के राग और आत्मा भिन्न लिया, राग और ज्ञान भिन्न लिया,
इतना ही सुना।
वो तो बहुत त्रिकाली का उतना पक्ष करते हैं अपने शैली में, कथन पद्धति में, लेकिन कहां से चालू हुआ उनको, राग और ज्ञान भिन्न है, यहां से चालू हुआ। गुरुदेव का उस वचन को परिणमित किया है, गुरुदेव को इस वचनामृत को अपने आत्मा में उतार लिया उन्होंने, यहां से चालू किया है,
परिचय कर लिया, परिचय कर लिया।
अपन बहुत तेजी से तो शायद मुमुक्षों को उसमें टाइम निकलता है प्रैक्टिस करने में, लेकिन उनको तो विकल्प का दुख तो बहुत लगता था। गुरुदेव को सुने पहले विकल्प का दुख लगे, ऐसी उत्कृष्ट योग्यता में तो वो आ चुके थे। गुरुदेव से उनको रहस्य मिल गया, एक प्रवचन में इसका रहस्य मिल गया कि ये दुख क्यों लगता है, मुझे विकल्प का दुख क्यों लगता है, उसका रहस्य मिल गया। वो रहस्य एक वचन में मिला कि राग और ज्ञान भिन्न है, बस पूरा रहस्य 12 अंक का सार ले लिया एक वचन में, 12 अंक का सार ले लिया। ऐसी बात है, वो भीतर में वो मिलान कर लेते हैं, सुनते ही अपने परिणमन के भाव, परिणमन में जो भाव अनुभव गोचर होते हैं उसको मिलान कर लेते हैं। बिल्कुल भिन्न है, ज्ञान भिन्न है, रागादि भिन्न है, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया, अभी तक मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। तो गुरुदेव के आवाज में, वाणी में एक ऐसा अतिशय था क्या कि उस भिन्नता अनुभव गोचर करके वो कहते थे। क्या विशेषता थी कि वो अनुभव में लेकर के वो बात करते थे। तो उन्होंने सिर्फ वो बात को नहीं देखी, गुरुदेव के अनुभव को देख लिया। तो ये अनुभव को देख लिया तो अनुभव की पद्धति को देख लिया, अनुभव की पद्धति से उस पद्धति को अंगीकार कर ली। जहां तक श्रोता ज्ञानी के अनुभव तक नहीं पहुंचता, वहां तक उसका रहस्य, उसको श्रवण में आई बात का रहस्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि रहस्य तो अनुभव में रहा है। बात तो बात है, वो बात तो अज्ञानी भी कर सकता है, राग और ज्ञान भिन्न है, वो तो पंडित भी कर सकता, विद्वान भी कर सकता है, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं है। तो अनुभव को देख लिया, अनुभव को देख लेने से क्या हुआ कि रहस्य तो मिला लेकिन गुरुदेव को भी पहचाना, ये दूसरी बात हो गई। तो पहला संकेत हो गया। तो उसमें तो स्वभाव को समझ लिया, गुरुदेव को पहचान लिया, और अपने परिणमन में भेद ज्ञान की विधि को ग्रहण कर ली। कितना कार्य हुआ एक साथ, कितना कार्य हुआ। परिचय हो गया, पहचान हो गई, हाँ विधि आ गई, रहस्य को पकड़ लिया, सब हो गया। कितनी पात्रता होगी, कितने सालों तक सुने तो जो बात पकड़ नहीं सके वो बात एक प्रवचन में पकड़ लिया, इतनी पात्रता निर्मलता थी। ठीक है, काल लब्धि का पर उनका ध्यान गया कि नहीं गया, सुगानी जी का दीर भाई उनका ध्यान गया था कि नहीं गया, इनका सुगानी जी का गया था
नहीं,
आपका क्यों गया। सुगानी जी का ध्यान काल लब्धि पर गया था कि नहीं गया था, तो फिर आपका क्यों जाता है। आपका इसलिए जाता है कि उनकी तो काल लब्धि पक्की थी, मेरी कहाँ पक्की है इसलिए मुझे रहस्य पकड़ने में नहीं आता। कहते हैं कि ऐसा परिणाम वो मुमुक्षुओं को करने लायक, काल लब्धि वो जानने की चीज है, अवलंबन लेने की नहीं, क्रमबद्ध पर्याय जानने की चीज है, अवलंबन लेने की नहीं, ऐसी बात है। जो काल लब्धि को मुख्य करेगा उसको नुकसान यह होगा कि अपना पुरुषार्थ की मुख्यता में वो नहीं आएगा, और जो पुरुषार्थ की मुख्यता करेगा उसको मेरी काल लब्धि पक गई है ऐसा ज्ञान सहज हो जाएगा, ये बात है उसमें। तो क्या कहते हैं यहां कि यह आत्मा अज्ञान भवन व्यापार रूप क्रोधादि क्रिया है, उसमें कर्तापना का अनुभव करता है, उसका कर्ता हो करके वो क्रोधादि को करता है। ये मैं करता हूं, ये मेरा कार्य है, ऐसा एकत्व को प्राप्त हो जाता है। नाता दृष्टापना है, उदासीन क्रिया है, वो अपना स्वरूप है, उसका त्याग कर दिया और क्रोधादि को ग्रहण कर लिया, अगर क्रोधादिक का त्याग करे और ज्ञाता दृष्टापना का ग्रहण करे तो कर्ता कर्म की अनादि की संसार परिभ्रमण की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा। ये समझाना चाहते हैं, इधर ये समझाना चाहते हैं। थोड़ा ये जो विषय है उसका क्या परिणमन कैसे चल रहा है, उल्टा प्रयोग कैसे चल रहा है, उसका अवलोकन करना चाहिए। कि जो ज्ञान चल रहा है वो तो उदासीन भाव है, मात्र जानना वो तो उदासीन परिणमन है, और ये तो मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूपी होने से मेरा ये स्वरूप है, उसको तो मैं ग्रहण नहीं करता, उसको तो छोड़ देता हूँ। और क्रोधादि परिणाम में कर्ता हो करके, तन्मय हो करके, एकत्व हो करके, अज्ञान भवन व्यापार रूप परिणाम कर करके मेरा संसार में बढ़ाता हूँ। इस बात को, अपनी भूल को समझे नहीं तो भूल छूटे नहीं, और ये भूल ऐसी है कि इसको समझने से वो छूटे बिना रहे नहीं। मिथ्यात्व को जो समझेगा उसको मिथ्यात्व रहने वाला नहीं है। मिथ्यात्व का ज्ञान मिथ्यात्व का नाश कर देता है, ऐसी बात है। लेकिन जहां मिथ्यात्व हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, उसके अनुभव को पकड़े तब तो उसका नाश होवे, पकड़े नहीं तो नाश होने वाला नहीं है। थोड़ा और विस्तार से लेंगे उसको। देव सिद्धिमंदर भगवान जय गुरु कृपा उसी काल गुरुदेव।